ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च अतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। बहुत समय बाद आप सबको यहाँ मंदिर में देखकर प्रसन्नता हो रही है। वैसे आप सबको भी सबको तो नहीं, कुछ लोगों को तो दो दिन हम साथ में थे, लेकिन मंदिर में यहाँ देखकर प्रसन्नता है। दिवस भी अच्छा है आज का, है ना? क्या दिवस है? ईद मुबारक। तो अक्षय तृतीया का दिवस, बहुत शुभ दिवस है आज का दिन। अभी हम बता रहे थे कुछ देर पहले कि साल में चार दिन इनमें कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, चार दिवसों में। तो पहला चैत्र महीने का पहला दिवस, जिसे गुड़ी पाड़वा कहते हैं, महाराष्ट्र में पाड़वा कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। तो उस दिन कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। ज्यादातर हम लोग सब काम मुहूर्त देख कर करते हैं ना। कभी कभी हम किसी की शादी का कार्ड देखते हैं, 11:32 पर, पता नहीं 1 मिनट इधर उधर हो गया तो क्या होगा। वैसे 11:32 पर करने के बाद भी कुछ होता नहीं है, लेकिन मुहूर्त देखा जाता है। तो चार दिवसों में कभी मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। पहला है गुड़ी पाड़वा चैत्र, दूसरा विजयदशमी। विजयदशमी के दिन भी कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। तीसरा है कार्तिक पूर्णिमा, अर्थात कार्तिक महीने का पहला दिवस, उस दिन भी कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। और चौथा है अक्षय तृतीया, आज का दिवस। वैशाख महीना प्रारंभ हो रहा है, प्रारंभ हो चुका है, तो अक्षय तृतीया, ये भी इस दिन भी कभी कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। वैसे भक्तों के लिए हर दिन अक्षय तृतीया का दिन है, क्योंकि भक्तों को वैसे भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने हरि नाम ले लिया, भगवान की सेवा कर ली, कथा सुन ली, उससे शुभ और क्या हो सकता है। इसलिए भक्तों को तो वैसे भी मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी भक्त भी मुहूर्त उस समय देखते हैं जब विवाह का समय होता है। चाहे कुछ हो जाए, वो मुहूर्त तो देखेंगे ही, पंचांग क्या नहीं, वो कुंडली मिलाएंगे ही। इंग्लिश में कुंडली को हॉरोस्कोप कहते हैं, हॉरोस्कोप मतलब, हॉरर मतलब खतरा या भयानक चीजें, और उसका स्कोप तो आपकी कुंडली में ये बताया जाता है कि जीवन में जो भयानक चीजें होने वाली, उसका कितना स्कोप है। देखो, देख सकते हो आप, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको हॉरोस्कोप कहते हैं। तो लोगों को बहुत विश्वास है, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए भगवान के नाम पर। तो आज का दिवस महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज के दिवस पर बहुत सी ऐसी चीजें हुई। अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य आज के दिवस पर हुआ था। कथा बताई, शिव जी भूखे थे तो उसके लिए अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य आज हुआ। साथ ही कहते हैं सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी आज के ही दिवस पर हुआ। और परशुराम जी, इनका जन्म आज के दिवस पर हुआ है। और फिर महाभारत का वो प्रसिद्ध प्रसंग जहां युधिष्ठिर महाराज को सूर्यदेव ने अक्षय पात्र दिया। फिर लोग उसने द्रौपदी को दिया, दरअसल महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर महाराज को दिया था, तो अक्षय पात्र दिया। ये भी आज के दिवस पर हुआ। और साथ साथ आज के दिवस पर कुबेर जी को लोकपाल बनाया गया, चौथा लोकपाल ब्रह्मा जी ने, तीन पहले से थे ब्रह्मा जी ने, चौथा लोकपाल कुबेर जी को बनाया था। और सुदामा भी आज ही के दिवस पर कृष्ण से मिलने आए थे। अक्षय तृतीया का ही दिन उन्होंने चुना था कि जब वो आए मिलने के लिए। और रथ यात्रा का प्रारंभ भी जगन्नाथपुरी में आज से ही होता है। आज के दिवस से रथ बनना प्रारंभ हो जाता है। रथ यात्रा तो अब 2 महीना है, 1.5 महीना 2 महीना, लेकिन रथ बनना आज से प्रारंभ होता है। और इसके साथ साथ ही ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने रचना शुरू की थी इस जगत की आज ही के दिवस पर। और बहुत से उन्होंने दुख मोह इत्यादि उन्होंने बनाए। तो ये कई ऐसे प्रसंग आज के दिवस पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। बद्रीनाथ में आज के दिन पर दरवाजे खुलते हैं, भगवान के दर्शन अब खुल गए हैं, तो आज लोग बहुत वहां पर दर्शन के लिए अब से जाएंगे। 1.5 महीना 2 महीना जब तक दर्शन बंद ना होने लगे, बर्फ बहुत ज्यादा गिरने लगती है। और श्रील प्रभुपाद, हम लोग सारी चर्चाएं कर रहे हैं ब्रह्मांड भर की, प्रभुपाद को तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने आज ही के दिवस पर सबसे पहले प्रचार के लिए एक संगठन का आयोजन किया था। तो आज का दिवस था जब प्रभुपाद ने 1953 में सबसे पहले 1953 16 मई 1953 को प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में इसकी स्थापना की। तो ये पहला आज ही का दिवस, प्रभुपाद ने आज का दिवस चुना प्रारंभ करने के लिए प्रचार को, लीग ऑफ डिवोटीज का भी स्थापना आज किया था। तो ऐसे बहुत सारे आज के प्रसंग हैं। हम सोच रहे थे कौन से प्रसंग पर चर्चा करें, और आप सब जानते हैं कि आज के दिवस से चंदन यात्रा भी प्रारंभ होती है। आप देख ही रहे हैं, दर्शन कर ही रहे हैं। तो चंदन यात्रा के विषय में हम अभी अभी चर्चा कर चुके हैं, आप में से कई लोग सुन चुके होंगे शायद। कितने लोगों ने सुन लिया तो बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप सब सुन चुके हैं। तो चंदन यात्रा भी आज के दिवस पर प्रारंभ, वहां भी लोग सुन रहे, कितने लोग? हाँ, तो वो लोग भी कुछ सुन रहे हैं वहां पर। तो चंदन यात्रा का ऑलरेडी हम वर्णन कर चुके हैं संक्षेप में, कि चंदन यात्रा ये हमें प्रेम, सेवा और समर्पण का मार्ग दिखलाती है। और अक्षय पात्र, ये अक्षय क्या है? अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए जो पात्र दिया गया वो अक्षय पात्र कहलाए। उसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होगा जब तक द्रौपदी खाना है, और जब द्रौपदी ने खा लिया उसके बाद कुछ नहीं आएगा। ये सूर्य देव ने ये अक्षय पात्र दिया था। हम सोच रहे थे कि उस अक्षय का वर्णन करें, अक्षय क्या है और हमारे जीवन में अक्षय क्या होना चाहिए। आज के दिन लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, जैसे कि उससे मतलब वो अक्षय रहे, हमेशा सोना बना रहे। तो भक्तों को क्या खरीदना चाहिए आज के दिवस पर? भक्तों को हरि नाम खरीदना चाहिए, बाजार में जाना चाहिए, नाम का बाजार लगा है, नित्यानंद प्रभु ने लगाया है, और साथ ही साथ हमें आज प्रार्थना करनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण से कि हमारी भक्ति को अक्षय करें, क्योंकि हमारी भक्ति इस जगत में, वैसे तो भक्ति अक्षय है, भक्ति को कोई चुरा नहीं सकता, लेकिन इस जगत में ढक जाती है, तो कभी प्रकट होती है कभी नहीं। तो भगवान से याचना करनी चाहिए कि हमारी भक्ति अक्षय रहे, जो अक्षय भक्ति है उस अक्षय भक्ति का अनुभव हमें हो सके। दूसरी प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि भगवान से कि भक्तों की कृपा अक्षय रहे, कभी कम ना हो, बढ़ती जाए। आज के दिवस पर हम वैष्णवों से भी प्रार्थना करें उनकी कृपा के लिए। दरअसल आज का दिवस सही में हरेक वैष्णव से कृपा की याचना करने का दिवस है। अगर हम सही में चाहते हैं, अक्षय तृतीया सही में मनाना चाहते हैं, तो ये जानना चाहिए, तृतीया मतलब तीन चीज, तीन होता है, तृतीया मतलब तीसरे दिन को कहते हैं तीन, और अक्षय, तो इस जगत में तीन ही चीजें अक्षय है। अक्षय तृतीया हमें यह संदेश देती है बड़ा स्पष्ट कि इस जगत में तीन ही चीजें अक्षय हैं, भगवान, भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त। जय श्री श्री गणराज की। तीन ही चीजें अक्षय है, बाकी सबका क्षय होने वाला है। तो कोई कह सकता है ठीक है भगवान मान लिया, भक्ति मान ली, भक्तों का तो क्षय हो जाता है, भक्त समाप्त हो जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मूर्ख है वो व्यक्ति जो ये सोचता है कि वैष्णव मर गए, अज्ञानी है वो, क्योंकि वो सोचता है वैष्णव मर गए। तो वैष्णव वो कभी नहीं मरते, मन में प्रश्न आते हैं प्रभुपाद नहीं है, रूप गोस्वामी नहीं है, भक्ति सिद्धांत नहीं है, कैसे नहीं मरते? क्योंकि वैष्णव जब तक जीवित रहते हैं, अर्थात जब तक शरीर में पृथ्वी पर रहते हैं, तब तक अपने आचरण से, अपनी अपने शिक्षाओं से, अपने कार्यों से जीवित रहते हैं। और जब इस पृथ्वी से कहीं और चले जाते हैं किसी और सेवा के लिए कहीं और, तो अपनी वाणी के द्वारा वो हमेशा हमारे बीच रहते हैं। इसलिए हम में से किसी को भी शायद कभी प्रभुपाद की कमी नहीं महसूस होती। कभी कभी भक्त हमसे एक दो बार बात करते हैं, वो कहते कि हमें बड़ा दुख होता है कि हमें प्रभुपाद के दर्शन नहीं हुए। हमने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद गए ही नहीं। कोई किताब उठा लीजिए, खोल लीजिए, प्रभुपाद के दर्शन के प्रभुपाद बात करना शुरू कर देता है। तो आप में से कितने लोगों को कभी कमी लगती है प्रभुपाद की कि प्रभुपाद नहीं है हमारे बीच? किसी को लगता है? किसी भक्त को नहीं लगता। रोज हम गुरु पूजा कर रहे हैं, रोज प्रभुपाद की जय कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उनके भक्तों का, उनकी संस्था में हमने आश्रय लिया है। तो इसीलिए आज का दिवस है कि हम सब हरेक भक्त से, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, वरिष्ठ हो, हमारे समान हो, कोई भी क्यों ना हो, उससे कृपा की याचना करें। इसीलिए हमें सोना खरीदने की जरूरत नहीं है, हमें जो सोने जैसे भक्त हैं उनकी कृपा की जरूरत है। श्रील प्रभुपाद ने इस बात को कहा जब पाश्चात्य जगत में हमारे काम में पैलेस ऑफ गोल्ड बना रहे थे, श्रील प्रभुपाद का एक बहुत सुंदर मंदिर, तो वहां भक्त पूछ रहे थे, प्रभुपाद को दिखा रहे थे यहाँ ये होगा यहाँ वो होगा, तो उन्होंने खंबे दिखाए, उन्होंने कहा प्रभुपाद हमने सुना है कि भगवान के महल में द्वारका में जो खंबे थे वो रत्नों के बने हुए थे, तो हम भी इसमें लगा दें, रत्न लगाए इसमें। तो प्रभुपाद ने देखा और प्रभुपाद ने कहा कि मेरे भक्त ही मेरे रत्न है, जरूरत नहीं है रत्न लगाने की। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमें धन सोना खरीदने की जरूरत नहीं है, जो रत्न जैसे भक्त हैं उनकी कृपा की याचना हमें चाहिए आज का दिन, ताकि वो अक्षय रहे हमारे जीवन में। ये जान लीजिए अगर हमें कोई बचा सकता है तो केवल भक्तों की कृपा, नहीं तो बड़े बड़े भक्त पतन होते देखे हैं हम लोगों ने, सुना है हम लोगों ने। क्यों? हमें ध्यान है कि कई वर्ष पहले कोई बड़े वरिष्ठ सन्यासी वैष्णव का पतन हुआ, तो हमने अपने वरिष्ठों से एक प्रश्न किया था कि हमने कहा ऐसा क्यों होता है? भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि एक बार ऊंचा स्वाद ले लिया फिर नीचे स्वर्ग की ओर कोई नहीं जाता। तो अगर कोई सन्यासी है तो ऊंचा स्वाद ले रहा है तो फिर ऐसा कैसे होता है कि वो नीचे स्वाद की ओर चले जाते हैं, जबकि भगवद गीता में भगवान ने कहा है, क्या कहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्तेहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा अनिवर्तते। तो उत्तर ये था कि सतत लेते रहना चाहिए, ये नहीं कि हमने एक बार ले लिया, हाँ वैष्णव ने सर पर हाथ रख दिया, जीवन सफल, उसके बाद कोई चिंता ही नहीं है, जो मन में आए करो। सतत कृपा चाहिए, सतत स्वाद लेते रहना चाहिए भक्ति का, और सतत भक्ति का स्वाद लेने के लिए सतत कृपा चाहिए, वैष्णवों की कृपा। वैसे तो कहा गया है कि एक क्षण भक्तों के साथ मिल जाए, आधा क्षण मिल जाए, तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम। लेकिन हमारी जो बद्धता इतनी है कि हम उस एक क्षण को अपने जीवन में उतार नहीं पाते, उसको जीवन नहीं बना पाते। ये किसके लिए है, तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम, उस व्यक्ति के लिए जिसने उस क्षण को, उस समय को अपना जीवन बना लिया, अर्थात जो कृपा मिली उस कृपा को ही जीवन बना लिया, तब ये माना जा सकता है कि उसको कोई और आवश्यकता नहीं। लेकिन हम लोग उसको गंभीरता से लेते नहीं, उस संग को, उस महत्व को नहीं समझते। हमारे लिए भक्तों का संग ठीक है, बाकी चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण है। हम बार बार इस बात को दोहराते हैं, लेकिन क्या करें, वो जब तक हथौड़ी बार बार नहीं मारी जाए तो कील अंदर जाती नहीं है, है ना, सही है ना। तो हमारे लिए हमारी जॉब कितनी महत्वपूर्ण है, हम सब कुछ छोड़ देते हैं उसके लिए, यात्रा नहीं आएंगे प्रभु जी क्यों, तो क्या करें, जॉब चल रही है, संडे प्रोग्राम नहीं आएंगे, अगर संडे जॉब पे बुलाइए तो संडे जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम पे नहीं आएंगे, सही है ना। आप लोगों को लगता होगा प्रभु जी बार बार यही बात कर क्यों आ जाते, कुछ और तो बोल देते, क्योंकि हमें लगता घर ही नहीं चलेगा, अगर जॉब नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा, ऐसा है, जॉब नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा, हमारे सामने उदाहरण है ना, जॉब नहीं कर रहे घर चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है या नहीं चल रहा, अगर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आसपास देख लीजिए बहुत अच्छे से चल रहा है, तो कमी हो रही है, पहले से अच्छा, देखिए पहले से अच्छा। तो ये केवल हमारे मन में है कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे, हमें खुद ही करनी है, हमारा बॉस हमारी रक्षा करेगा, हमारा जॉब हमारी रक्षा करेगा, लेकिन भक्तों को ये जानना चाहिए कि केवल कृष्ण रक्षा करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब लोग छोड़ दें जॉब, वैसे छोड़ भी दे तो कोई चिंता नहीं, मंदिर में कौन बहुत जगह, चिंता नहीं, लेकिन विश्वास की बात। तो आज का दिवस हरेक भक्त से क्षमा याचना करने का, बहुत सारे अपराध किए होंगे हमने, और हम अपने लिए तो कह ही सकते हैं, मतलब आप लोग कहेंगे प्रभु जी आपको तो सोचने की जरूरत नहीं कितने अपराध किए आपने, क्योंकि आप सोच नहीं पाओगे इतने कर रहे हैं, सोचो एक बार। लेकिन आप लोगों ने भी अगर कभी पिछले एक वर्ष में जीवन में कभी एकाध कोई कहीं गलती से अपराध कर दिया हो, तो आज का दिवस है क्षमा याचना, अक्षय कृपा याचना का, अक्षय भक्तों की कृपा बनी रहे। तो जैसे सूर्यदेव ने आकर युधिष्ठिर महाराज को ये पात्र दिया और कहा कि इसमें भोजन, ये अक्षय पात्र, ये भोजन हमेशा इसमें रहेगा, जब तक द्रौपदी नहीं खा लेगी तब तक जितना चाहोगे उतना निकलेगा। क्यों दिया था, क्योंकि वन में थे, और तो क्या वन में थे तो क्या युधिष्ठिर महाराज को फल फूल खाने में, फल इत्यादि खाने में तकलीफ थी, रामचंद्र जी गए थे उन्होंने कहीं कुकिंग की क्या, बताइए, रामचंद्र जी भी तो वन में गए थे, तो भगवान वन में गए उनको अक्षय पात्र नहीं मिला, उनको बेचारे लक्ष्मण ढूंढ ढांड के ला रहे हैं, वो खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्या पता नहीं कुकिंग भी की होगी सीता मैया ने, सीता मैया तो साथ में थी, लेकिन भगवान के भक्त जंगल में जा रहे हैं तो उनको अक्षय पात्र नहीं, ये भगवान की कृपा है। भगवान अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते। हनुमान जी जा रहे हैं, लंका पार करनी है उनको, तो भगवान ने शक्ति दे दी, जंप लगाओ पहुंच गए, बस रा इधर माँ उधर हो गया, पहुंच गए। लेकिन जब भगवान को जाना है वो विचार कर रहे हैं 3 दिन तक, कैसे जाऊंगा, कैसे पार करेंगे, समुद्र से प्रार्थना कर रहे भाई रास्ता दे दो, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। भगवान 3 दिन तक हाथ का तकिया बनाकर वहीं लेटे हुए हैं समुद्र की ओर देखकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो बताइए, जिनका जिनका सेवक एक छलांग में पहुंच जाता है वो खुद 3 दिन तक प्रार्थना कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कैसे जाएंगे, और फिर क्रोध में आकर वो सब कथा। भगवान श्रेय देना चाहते हैं, भक्तों की सुविधा देखना चाहते हैं, अपने ऊपर कष्ट आए कोई बात नहीं, वो भक्तों को चाहते हैं कि उनको सुविधा मिलनी चाहिए। हनुमान जी का उदाहरण है कि उन्होंने, अर्जुन का उदाहरण है, युद्ध में मारा किसने था सबको, जैसे हम लोग जानते हैं कि युद्ध के प्रारंभ में पहले अध्याय में भगवद गीता के भगवान आए और भगवान ने सबको देखा, वर्णन किया। तो जैसे ही देखा, आचार्यगण वर्णन करते कि उन्होंने देख कर ही उनकी सबकी उम्र खत्म कर दी, आयु क्षीण कर दी, सबको मार दिया भगवान ने। और युद्ध के बाद भी वर्णन है कि जब किससे पूछा गया था, तो एक व्यक्ति देख रहे थे, तो उनको पूछा गया कि बताओ कौन सबसे अच्छा योद्धा था, सबसे अच्छी लड़ाई किस, तुमने तो सारा युद्ध देख लिया, बताओ सबसे अच्छी लड़ाई किसने लड़ी, कौन सबसे अच्छा कर रहा था, कर्ण था, ये था, कौन था बताओ। तो मैंने कहा कौन था मतलब, मैंने तो एक ही व्यक्ति को लड़ते हुए देखा, के एक ही व्यक्ति मार रहा था, वो थे कृष्ण, बाकी सब तो खड़े हुए थे। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते निमित्त मात्रम भव सत्य साक्ष। इसीलिए अक्षय पात्र दिया गया तो किस लिए दिया, युधिष्ठिर को, क्या युधिष्ठिर कंदमूल खाकर नहीं रह सकते, वन में ऋषि मुनियों की तरह नहीं रह सकते, राजा है तो क्या वो वनवास के लिए गए हैं, वनवासियों की तरह रहना चाहिए। अक्षय पात्र क्यों मिला, युधिष्ठिर के लिए नहीं, उन्हें मिला था, उनके साथ हजारों ब्राह्मण गए थे और हजारों ब्राह्मण आते थे उनको मिलने, और युधिष्ठिर ये चाहते थे कि मैं गृहस्थ हूं और मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, तो उसके कर्तव्य को पूरा करने के लिए वो दिया गया था, वो उनके पर्सनल यूज के लिए नहीं दिया गया था कि भाई आप भूखे मत रहना, क्योंकि इतने ब्राह्मण थे। जब युधिष्ठिर जाने लगे वन में तो सब उनके साथ हो लिए, और बड़े बड़े ऋषि, धौम्य ऋषि इत्यादि, तो युधिष्ठिर महाराज ने रोक दिया सबको, आप नहीं आना, आप कहाँ आ रहे हो, अरे मैं जंगल में मेरा खुद ठिकाना नहीं, मैं क्या खाऊंगा कैसे रहूंगा, आपको सबको कहाँ ले जाऊं। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज से आप चिंता ही मत कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं खाने को मिले या ना मिले, राइट। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं तो यात्रा में जाते हैं तो कोई चिंता नहीं होती खाने को मिले या ना मिले, हम देख रहे थे इस यात्रा में, भक्तों को कोई चिंता नहीं, बस कथा हो रही है। उन्होंने कहा कि एक बार भी प्रसाद नहीं मिला तो कोई बात नहीं, राइट, यही भाव था ना। तो युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने कहा कि कोई चिंता नहीं है महाराज, आप चिंता ही मत करो हमारे खाने पीने रहने की सुविधा की, आप जहां रहोगे वहां कृष्ण कथा होगी, ये उनको पता था। तो उन्होंने कहा हम तो कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं इसलिए आपके साथ चल रहे हैं, अब यहाँ पर कौन कृष्ण कथा करेगा, ये दुर्योधन कथा होगी, शकुनी कथा होगी, इसलिए आपके साथ चल रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा आपका भाव सही है लेकिन मैं गृहस्थ हूं, मेरा कर्तव्य है कि आप अगर मेरे साथ है तो मुझे आपका ध्यान रखना है, तो आप मत चलिए। लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा नहीं माना चाहते, उनके लिए सूर्य देव ने अक्षय पात्र दिया कि युधिष्ठिर अगर इनकी सेवा नहीं कर पाए तो युधिष्ठिर प्राण त्याग सकते, युधिष्ठिर का ये भाव था कि अगर मैं सेवा, इसलिए उन्होंने कहा ये गृहस्थों का बहुत बड़ा कर्तव्य है सेवा, जितनी क्षमता हो सेवा करे, तो युधिष्ठिर अगर नहीं कर पाते तो प्राण त्याग देते, सूर्य देव ने कहा नहीं आप करो सेवा करो। इसलिए हम जाते दुर्वासा मुनि आए, 60,000 उनके साथ शिष्य थे, तो ऐसे ही लोग आते रहते, और युधिष्ठिर हर एक के लिए आइए प्रसाद दीजिए, तो द्रौपदी से पूछते नहीं थे कुछ बना है या बना सकते हो या नहीं बना सकते, तो उस समय भी उन्होंने ऐसे ही कहा था, द्रौपदी खा चुकी थी लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा आइए प्रसाद दीजिए, दुर्वासा ने कहा हाँ हाँ लेंगे तैयारी करो। रक्षा भगवान ने की। आप सोचिए उस समय के लिए द्रौपदी को कितनी चिंता हुई होगी। युधिष्ठिर महाराज को तो चिंता नहीं थी, उन्होंने कह दिया आइए, फिर जाकर कहा भाई कुछ बनाओ, बना बनाओ कहां से, तो कुछ है ही नहीं, अक्षय पात्र खाली। तो ये चिंता कृष्ण को आकर्षित करती। देखिए भक्तों को क्यों चिंता होनी चाहिए और क्या चिंता होनी चाहिए। भक्तों को चिंता ये नहीं होनी चाहिए कि मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा, मेरा कैसे घर चलेगा। भक्तों को चिंता होनी चाहिए मैं कैसे सेवा करूंगा, कैसे अन्यों को खिलाऊंगा, कैसे भगवान का मंदिर बनाऊंगा। ये चिंता नहीं कि अपना घर कैसे बनाऊंगा, भगवान का घर कैसे बनाऊंगा। और ये चिंता कृष्ण को आकर्षित करती। द्रौपदी को चिंता थी, अपनी तो नहीं थी, द्रौपदी को चिंता थी मैं कैसे खिलाऊंगी, और नहीं खिलाया तो युधिष्ठिर का नाम धर्मराज ये क्या होगा, वो चिंता थी। और युधिष्ठिर का नाम खराब होना मतलब कृष्ण का नाम खराब होना, भगवान के महान भक्त हैं, और इसलिए आश्रय किसका लिया, कृष्ण का। तो अक्षय पात्र की ये जो कथा है ये हमें सिखलाती है कि हर अवस्था में हमें कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। हमें कृष्ण को आकर्षित करने के लिए भक्तों की सेवा की सदैव चिंता रहनी चाहिए। अपनी चिंता नहीं, हमने खाया नहीं खाया, भक्तों ने खाया कि नहीं खाया, उनकी सेवा की चिंता हमें होनी चाहिए। इससे कृष्ण आकर्षित होते हैं। हमें भूखे रहने की जरूरत नहीं है, हम कहेंगे हम कुछ नहीं खाएंगे कृष्ण की प्रसन्नता, ठीक है वो भी कभी करना हो उपवास करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम भक्तों की सेवा कर पाए कि नहीं। तो अक्षय तृतीया के दिन इस भाव को उत्पन्न करने की प्रार्थना कीजिए भगवान से कि मुझे अगर जीवन में कोई चिंता हो तो ये चिंता हो कि मैं भक्तों की सेवा कर पाया कि नहीं कर पाया। मरते दम तक जीवन हमारा सफल तब होगा जब आप मान लीजिए कि आप मर रहे हैं, मृत्यु की शैया पर हैं, और आपकी चिंता हो रही है मैं सेवा कैसे कर जाऊं, जाते जाते क्या सेवा करके जाऊं। श्रील प्रभुपाद प्राय 14 नवंबर आने वाला, प्रभुपाद देह त्यागने वाले हैं, लेकिन वो चिंता क्या कर रहे हैं, अरे उस भक्त के उस पांव में कुछ फोड़ा हो गया था, वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, खुद हिल नहीं पा रहे हैं, उनको हिलाने के लिए भक्त लग रहे हैं, प्रभुपाद चिंता कर रहे हैं। प्रभुपाद उस समय भी पूछते थे, आपको आश्चर्य होगा जानकर, जब प्रभुपाद बिस्तर पर है, बस 2 दिन 4 दिन बाकी है उनके जाने में, प्रभुपाद पूछते थे प्रसाद क्या बनाया भक्तों के लिए। आप सोच सकते हम लोग करेंगे, कोई कितना तकलीफ, बेड पर है, पेन है, घुमा नहीं जा रहा, उनको कोई घुमा रहे हैं, उस प्रभुपाद को ना चेतना अलग है, लेकिन हम बता रहे हैं उस समय में प्रभुपाद ये पूछा करते प्रसाद क्या बना है, मतलब भक्तों के लिए सही अच्छा प्रसाद बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये सिद्धांत है, ये हमारे आचार्य हैं जो हमें सिखला रहे हैं कि हमारा जीवन हमारे लिए नहीं होना चाहिए। तो हमारी चिंता क्या हो, आज प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान मुझे ऐसी ऐसी चेतना दीजिए कि मेरी चिंता हो कि मैंने भक्तों की सेवा की कि नहीं। मरते दम तक प्रार्थना कीजिए कि मरते मरते भी सेवा करके जाए भक्त, ये हमारा भाव होना चाहिए। इसे कहते हैं अक्षय, हमारी सेवा अक्षय रहे, भगवान की कृपा अक्षय रहे हमारे ऊपर, उसका कभी नाश ना हो। तो इसलिए ये अक्षय तृतीया का दिन या चंदन यात्रा का दिवस इस सेवा का दिवस है, ये चंदन यात्रा पूरी सेवा, भगवान के लिए चंदन घिसना। कल कुछ भक्तों ने किया शायद, राइट, कुछ भक्तों ने कल किया, कितने आए थे, 6-7 लोगों ने आया कल चंदन घिसा। बड़े बड़े मंदिरों में तो पता नहीं कब से 15-15-20-20 दिन पहले से घिसना शुरू हो जाते, क्योंकि इतना चंदन लगता है, बड़े विग्रह होते हैं तो उनको बहुत चंदन लगता है। तो यहाँ पर ये भी सेवा आप लोग कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, चंदन तो भगवान को रोज लगेगा। तो ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसको उत्पन्न कीजिए, जो अक्षय पात्र का भाव है, कभी समाप्त ना। और अगर छोटी सी भी सेवा हम कर रहे हैं, स्वल्पमप्यस्य, एक दाना बचा है अक्षय पात्र में, भगवान जब आए द्रौपदी ने सब साफ साफ करके रख दिया था। भगवान भी आकर देखिए कैसे परीक्षा ले रहे हैं। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान का स्मरण किया, मैं दुविधा में हूं, हजारों ऋषि मुनि कहां से खिलाएंगे इनको, खत्म हो गया है। भगवान आए हैं और आकर सांत्वना नहीं दे रहे हैं द्रौपदी को, चिंता नहीं करो मैं आ गया हूं सब कर लूंगा। आकर कह रहे बड़ी भूख लगी है कुछ खाने को ला। हम सोच रहे थे द्रौपदी ने क्या सोचा होगा उस समय। द्रौपदी के मन में क्या आया होगा। पहले तो द्रौपदी ने देखा तो वो खुश हो गई होगी, अब सब ठीक हो जाएगा, और यहाँ आके कह रहे हैं मुझे थोड़ी भूख लगी कुछ लाओ खाने की, कुछ है ही नहीं। अरे ठीक है वक्ष पात्र, एक दाना कहीं पर रह गया। एक दाने का अर्थ क्या है, छोटी सी सेवा जो हमें भी ना दिखे। द्रौपदी को नहीं दिखा था दाना रह गया, हमें भी ना दिखे मान लीजिए, हमने कोई छोटी सी सेवा कर दी। क्या छोटी सी सेवा हो सकती है, चल रहे हैं कहीं जा रहे हैं, कोई भक्त खड़े हैं, हमने उनको हरे कृष्णा बोल दिया या उनको एक गिलास पानी दे दिया, जो हमें याद भी नहीं रहेगा। आपको याद है आपने किसी भक्तों को भी पिछले 15 दिनों में पानी दिया था, किन किन भक्तों को याद है, हमें याद भी नहीं। द्रौपदी को याद नहीं था वो छोटा सा दाना है या नहीं, लेकिन भगवान उस सेवा को याद रखते और उसके कारण भगवान ने उसको खाया एक बार, तो भगवान तुष्ट हो गए और फिर जगत तुष्टम। इसीलिए चंदन लगाया जाता है भगवान को, भी गर्मी बहुत है चंदन लगाएं, भगवान शीतल होगा शरीर भगवान का, अपने आप सबको शांति मिल जाए, टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाए। तो ये भाव, तो इसीलिए आज का दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिवस जैसे सुदामा का भी दिवस है, सुदामा आए आज के दिवस पर, तो वो कैसे अक्षय है। तो भगवान ने क्या दिया सुदामा को, सुदामा जब आए हैं, सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, आए थे मांगने, पत्नी ने कहा था जाइए कुछ लेकर आइए, सुदामा दरअसल मांगने नहीं आए थे लेकिन मांगना तो था। अच्छा सुदामा ने नहीं मांगा, भगवान ने भी नहीं पूछा, आपके घर आए हैं पता है इतने ब्राह्मण गरीब है, आप ही पूछ लेते कि भैया दे देते, पूछा भी नहीं दिया भी नहीं सुदामा को, कि जाते जाते ये लीजिए एक पैकेट डोनेशन, कुछ भगवान तो कुछ डोनेशन एक पैकेट नहीं देंगे। ना भगवान ने पूछा और ना सुदामा को दिया कुछ। तो आचार्यों ने वर्णन किया बहुत सुंदर, क्यों नहीं दिया भगवान ने। अब कोई आया है, आप लोग ऐसा करोगे, आपके घर आया, आपको पता है कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है और उसकी स्थिति सही नहीं है, वो दिख भी रहा है कपड़े फटे हुए हैं, और आप जानते भी हो परमात्मा हो तब पता है आपको, लेकिन आप उससे बातें कर रहे हो, अच्छा कैसे हो, सब ठीक है घर में, सब ठीक है, बहुत अच्छा है, अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा थैंक यू, कुछ दे नहीं रहे। तो भगवान क्या सोच रहे थे, भगवान सोच रहे थे कि मैं इसे क्या दूं, क्योंकि कुछ दूंगा इसको तो बहुत कम होगा, मैं दे रहा हूं, भगवान के द्वारा आया है तो इसकी भक्ति जो है, इसका जो प्रेम है, उसके बदले में तो मैं कुछ दे ही नहीं सकता। और कोई बड़ा व्यक्ति कुछ देता है तो उसको अपने स्तर का देना है, कोई छोटी चीज थोड़ी दे सकता है वो। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा करोड़ों करोड़पति व्यक्ति है, करोड़ों रुपया है उसके पास, आप उसके पास मंदिर के लिए डोनेशन मांगने जो 5 रुपए की रिसीट फाड़े हो, तो भगवान सोच रहे मैं कैसे इसको ऐसा सब दे दूं, देना है तो कुछ भारी देना होगा, और क्या दें। तो भगवान जब सोच रहे कि कुछ बड़ा देना है तो फिर कुछ बड़ा ही होगा। दूसरा भगवान सोच रहे थे कि मैं इसको देकर इसको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, वो मित्र का भाव जानते थे कि अगर कुछ दे देंगे भगवान तो वो भाव चला जाएगा। इसीलिए सुदामा का भाव क्या था, सुदामा को जब मिले भगवान ने कुछ नहीं दिया वो चले गए, तो क्या सोच रहे थे सुदामा जाते जाते, बहुत सुंदर श्लोक है। सुदामा ये नहीं सोच रहे थे कि भगवान ने कुछ किया ही नहीं, दिया ही नहीं, अरे मैं गया था पत्नी को जाके क्या बताऊंगा। सुदामा ये सोच रहे थे मुझे इतना सब दे दिया भगवान ने, कौन हूं मैं। सुदामा कहते हैं मैं एक गरीब व्यक्ति, कोई मेरी स्थिति नहीं, और श्री कृष्ण ने मुझे आलिंगन किया। वो ये सोचकर जा रहे हैं इतनी बड़ी चीज मुझे दे दी है, भव्य ये नहीं सोच रहे हैं कि अब में से कोई होता तो निश्चित यही सोचता था, फायदा नहीं हुआ, जाने आने का खर्चा भी निकला नहीं हम लोगों का, है ना, अरे सोचते यात्रा की खर्चा ही नहीं निकला, क्या फायदा हो जाने आने का। सुदामा ये नहीं सोच रहे, सुदामा सोच रहे भगवान ने मुझे आलिंगन किया, इससे बड़ा और क्या चीज, मैं कौन हूं जो मुझे आलिंगन किया जाए। ये सुदामा का भाव, और इसे कहते हैं अक्षय, अर्थात वो धन, वो संपत्ति जो भगवान दे सकते थे भौतिक दृष्टि से, भगवान ने दिया भी, लेकिन उससे ज्यादा अक्षय चेतना की आवश्यकता है। कैसी चेतना? इस सुदामा की चेतना। तो हमें अक्षय तृतीया के दिन द्रौपदी के से सीखना चाहिए कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, और सुदामा से सीखना चाहिए अक्षय चेतना, कभी कृष्ण को भूलना नहीं। ये सुदामा का भाव। तो अक्षय अर्थात कृष्ण का स्मरण अक्षय हो, ये आज के दिवस का सबसे बड़ी उपलब्धि होगी अगर हम इसको भगवान से मानते। तो कृष्ण का स्मरण उनका अक्षय था, और कभी उन्होंने कोई भौतिक कामना नहीं की कृष्ण से। परशुराम जी आज के दिवस पर प्रकट हुए, और परशुराम जी से हम क्या सीख सकते हैं? अक्षय। परशुराम जी की कथा हम जानते हैं, परशुराम जी ने अपनी ही माता का, अपने भाइयों का गला काट दी। पिता ने कहा, ये माता गई थी, उनका कुछ ध्यान गंधर्वराज की ओर चला गया, वापस आई तो पता चल गया। परशुराम जी के पिता को जमदाग्नि ऋषि, उन्होंने कहा अपने अन्य लड़कों से, परशुराम जी नहीं थे वहां, अन्य लड़कों से कहा, तुम्हारी माता ने गलत काम किया है, मार डालो इसे। उन्होंने कहा, नो भाई, बिल्कुल नहीं, हम क्यों मारे, माँ है, ठीक है, हो गई गलती। तो उनको बड़ा क्रोध आया, परशुराम जी आए, उन्होंने कहा, तुम्हारी माता ने गलत काम किया, इसको मारो, और ये बाकी तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं सुनी, इनको भी मार डालो। परशुराम जी ने फरसा उठाया, सबके गले काट दी, हार धार, किसी को नहीं छोड़ा। हमें ये नहीं सीखना है परशुराम जी से, अभी आ रहे हैं, जो सीखना है उस पर आ रहे हैं। तो परशुराम जी ने गला काट दिया। जमदाग्नि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए नहीं कि मेरी पत्नी मर गई, और मतलब आज की तरह नहीं था, लेकिन तो इसलिए नहीं प्रसन्न हुए, वो प्रसन्न हुए कि इसने मेरी बात सुनी परशुराम जी ने, तो बहुत प्रसन्न हो गए। परशुराम जी से कहा, मांगो, क्या मांगना है, वरदान देता हूं तुम्हें, खुश होकर। उन्होंने कहा, बस सरल चीज, मेरी माँ और भाई वापस पुनर्जीवित हो जाएं, और इनको याद नहीं रहे कि मैंने मारा था इन्हें, तो वो ज्यादा तकलीफ होगी। तो जमदाग्नि, तो परशुराम जी ने इसलिए मारा क्योंकि उनको पता था, अगर नहीं मारूंगा तो सब जलकर खाक हो जाएंगे, और मार दूंगा तो इनकी इतनी शक्ति है कि पुनर्जीवित निश्चित हो जाएंगे, तो इसलिए परशुराम जी ने मारा। और फिर आगे चलकर परशुराम जी ने कार्तिक वीर अर्जुन, सहस्त्र बाहु उसका नाम था, हजार बाहें थी, रावण तक को जिसने बंदी बना लिया था, उसको परशुराम जी ने मार डाला, उसकी सेना को मार डाला, खत्म किया, परास्त किया। और फिर आगे चलकर हम जानते हैं कि 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रिय विहीन कर दी पृथ्वी, कुछ लोगों को छोड़ दिया था, जैसे दशरथ महाराज, उनको मारा नहीं क्योंकि उन्होंने नारी को कवच बनाया था। दशरथ महाराज का एक नाम है नारी कवच। परशुराम जी की एक प्रण उन्होंने लिया था कि मैं क्षत्रिय को मारूंगा, लेकिन अगर उसका विवाह हुआ है तो एक वर्ष तक नहीं मारूंगा, एक वर्ष के बाद मारूंगा, अभी विवाह हुआ है मार दूंगा, पत्नी विधवा बेकार, क्या फायदा, तो एक वर्ष तक नहीं मारूंगा लेकिन फिर मारूंगा। तो जब भी परशुराम जी आने वाले होते थे, दशरथ महाराज एक विवाह कर लेते, इसीलिए 353 रानियां थी, तो विवाह कर लेते थे। तो परशुराम जी आते थे, दशरथ मारना है अब तुम्हें, अच्छा मारने वाले हो, अरे लेकिन अभी भी शादी हुई है, जय श्री, अभी भी शादी हुई है, विवाह हुआ है, अच्छा ठीक है अगले साल आऊंगा। तो अगले साल आते थे तो और एक विवाह कर लेते, दशरथ मारना, अरे अभी अभी विवाह, अच्छा ठीक है अगले साल आओ। वैसे बेचारे मार ही नहीं पाए, और फिर रामचंद्र जी ने बीच में उनकी शक्ति भी ले ली सारी, तो फिर दशरथ बच गए, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा नारी कवच, उन्होंने नारी को कवच बनाया और वो मरे, तो क्षत्रियों को समाप्त कर दिया परशुराम जी ने। और फिर परशुराम जी चिरंजीवी हैं, आप जानते हैं अभी भी हैं। परशुराम जी ने जब भगवान राम से उनकी भेंट हुई, सब क्षत्रियों को मार दिया, सब हो गया है, धनुष टूट गया, विष्णु धनुष पर भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ा दी, तीर चला दिया, और भगवान ने कहा मैं क्या समाप्त करूं तुम्हारा बताओ, तुम्हारे आवागमन की शक्ति जहां भी चाहो आ सकते हो, या फिर तुम्हारी ये शत्रु दमन शक्ति क्या समाप्त करो, तीर तो चला दी अब कहीं ना कहीं तो समाप्त करना होगा। तो परशुराम जी ने कहा आने जाने की शक्ति समाप्त मत कीजिए, मैं जाऊंगा कैसे वापस महेंद्र पर्वत पर, हाँ ये शत्रु क्षत्रियों को मारने की शक्ति अब वापस ले ली, तो भगवान ने उस समय उस शक्ति वापस ले ली। परशुराम जी शक्त्यावेश अवतार हैं, उनको शक्ति प्रदान की गई थी भगवान के द्वारा और भगवान ने वापस ले ली वो शक्ति। और उस समय भगवान ने उनसे कहा मांगो क्या मांगते हो, तो अक्षय क्या है ये परशुराम जी उस समय प्रकट करते हैं। परशुराम जी भगवान से मांगते हैं यदि मेनुग्रह हो राम तवसी मधुसूदन त्वद्भक्त संग त्वत्पादो दृढ़ भक्ति सदा तुम्हें। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पर अनुग्रह करना चाहते हैं हे राम, हे मधुसूदन, वहां मधुसूदन करके संबोधित किया, तो रामचंद्र जी को मधुसूदन क्यों किया आज हमने बताया था, कोई बताए जिसने सुना रामचंद्र जी को क्यों मधुसूदन कह रहे हैं, क्योंकि जब रामचंद्र जी से सीता देवी ने पूछा वन में आप अगला रूप कौन सा लेंगे, तो रामचंद्र जी ने एक शिला उठाई, अपना तीर लिया और उसके ऊपर गोपीनाथ का सुंदर रूप बनाया, आज वो गोपीनाथ जी रेमुना में है, वही विग्रह कृष्ण, वही कृष्ण है, इसलिए उन्होंने कहा मधुसूदन। तो यदि मैं अनुग्रह राम दवासी मधुसूदन त्वद्भक्त संग आपके भक्तों का संग बना रहे, त्वत्पादो आपके चरणों के प्रति दृढ़ भक्ति सदा, दो चीज मांगी, आपके भक्तों का संग रहे और आपके चरण कमलों के प्रति मेरी भक्ति सदा बनी रहे, अक्षय बनी रहे। तो आज के दिवस पर हम लोग परशुराम जी के भाव में, परशुराम जी की शिक्षाओं पर आधारित भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भक्तों का संग कभी ना छूटे और ये दृढ़ भक्ति हमेशा बनी रहे। तो ऐसे अक्षय तृतीया के बहुत सारे और चीजें हैं वर्णन करने के लिए, लेकिन समय कम है तो यहीं पर समाप्त करेंगे। प्रार्थना भगवान से अंत में आज के दिवस के लिए कि हम सबकी भक्ति अक्षय रहे, भक्तों की सेवा अक्षय हो, सदैव जीवन में कर सके प्रयास रखिए, और ये बारंबार प्रार्थना कीजिए कि जिस समय मर रहा हूं भगवान उस समय भी भक्तों की सेवा करके जाऊं, और साथ साथ कृपा की याचना भगवान से करें संग मिला रहे, संग बना रहे, ये सही दृष्टि में अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया तीन चीजें अक्षय हैं, भगवान, भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति, इसको कभी भूले नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।